तो अब चलते हैं अगली नसीहत पे। छठी नसीहत क्या है? कसरत से दुआएं मांगना। यानी आप मखसूस दुआएं या कोई ख़ास दुआ की बजाय क्या कीजिए? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हु या हज़रत अबू अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन फुतिह लहू मिन कुम बाबुद्दुआई फुतिहत लहू अब्वाबुर्रहमा वमा सुइलल्लाहु शैयन अहब्ब इलैही मिन अयुस अलल आफिया। तुम में से जिसके लिए भी दुआ का दरवाज़ा खोल दिया गया उसके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए गए। और अल्लाह से जो चीज़ें भी मांगी जाती हैं इन में अल्लाह ताला को आफियत से ज़्यादा महबूब कोई चीज़ नहीं। इसके अलावा भी अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, दुआ इन उमूर में फ़ायदा देती है जो नाजिल हो चुके हैं और इनमें भी जो नाजिल नहीं हुए। लिहाजा ए अल्लाह के बंदो, दुआ को लाजिम पकड़ो। तिर्मिज़ी की ये रिवायत है। देखिए, ये वो दरवाज़ा है जो मोमिन के लिए तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे खुला ही रहता है। आप घर का दरवाज़ा कब खोलते हैं? जब किसी को अंदर आने देना चाहते हैं। किसी को आप अंदर आने ही ना देना चाहें तो दरवाज़ा खोलेंगे? तो अल्लाह ताला दुआ की तौफीक देते ही उसको है जिसकी कबूल करनी होती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही, ये फिक्र न किया करो कि दुआ कबूल हुई कि नहीं, ये सोच लिया करो कि तुम्हें दुआ की तौफीक हुई कि नहीं। अल्लाह उसी को तौफीक देता है जिसकी उसने सुननी होती है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे महरूम हैं, हर चीज़ पे उनका एतबार है, दुआओं पे बेएतबारी। हर चीज़ पे ईमान, दुआओं पे बेईमानी। हर चीज़ को कहेंगे हाँ हाँ इससे फ़ायदा होगा, दुआ हाँ हाँ ठीक है इस ओके। लिखिए, दवा बामुकाबिल दुआ। सिर्फ दुआएं भी काफ़ी नहीं है आज के दौर में। इस हालात में वबाई अमराज से बचने के लिए सिर्फ दुआएं काफ़ी नहीं है, एकल व तवक्कल। इसी तरह सिर्फ दवाएं भी काफ़ी नहीं है। किसी ने पूछा, अल्लाह के नबी तकदीर पे यकीन रख लें या तदबीर भी? आपने फरमाया, खुलासा है बात का, तकदीर और तदबीर साथ साथ। माजी में ऐसे बातिल फिरके गुजर गए कि जो तकदीर के मामले में गुमराह हो गए थे। एक खुद को कहते थे जबरिया, जबरे महज, कहते थे हम तो मजबूर हैं, अल्लाह ने तकदीर का फंदा मेरे गलों में डाल दिया है, अब मजबूर है, सर भी नहीं हिला सकते, इधर नहीं देख सकते, उधर नहीं देख सकते। इसके बरखिलाफ़ एक दूसरा फिरका खड़ा हो गया, वो इसके बिल्कुल ही ऑपोजिट चले गए। उन्होंने क्या किया? कहने लगे, नहीं, यानी वो कहते थे सिर्फ तकदीर है, हम मजबूर हैं, और ये कहते थे तकदीर कुछ नहीं होती, हमारी तदबीरें हैं। इन्ना मऊती तो अला इल्मिन, जैसे कारून ने कहा था। पहले खुद को जबरिया कहते थे, दूसरे खुद को कदरिया कहते थे कि हमारी बड़ी कुदरत है, हम बहुत अपने ऊपर इख्तियार रखने वाले लोग हैं। अल्लाह के नबी ने जो दीन आपको मुझे दिया है, देखिए दीन के नाम पे भी एक्सट्रीम पे मत जाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कुरान सुन्नत खोल लीजिए, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल देख लीजिए, बाद में सहाबे कराम और ताबईन तबा ताबईन, आज तक की मुस्लिम हिस्ट्री खोल कर देख लीजिएगा। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का आपको जवाब दिया हुआ है। बैलेंस रहिए, हर चीज़ को बैलेंस रखिए। आप दीन के तकाजे में, अल्लाह के नाम पर तवक्कुल में इतना आगे चले जाएं कि आप कहते हैं कि हमें तो सर्दी में स्वेटर पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी जुल्म होगा। नहीं जी, मैं इतना ईमान रखती हूँ कि मैं तो बगैर स्वेटर के बाहर चली जाऊँ तो मुझे ठंड नहीं लगती, गलत कहते हैं आप। मीन्स की अपनी जगह। और दुआएं क्या होती हैं? मेरी नज़र में दुआ के चंद बड़े खूबसूरत से कह लीजिए कि निक नेम्स है। दुआ लाड है। दुआ अल्लाह और बंदे के बीच का एक रबता है। दुआ एक वो इबादत है जिसके लिए साथ बैठे को पता न चले, लब भी न हिले, बावजू भी नहीं होने की ज़रूरत। जहाँ आपकी कोशिशें ख़त्म हो जाएं वहाँ दुआ अपना काम शुरू कर दे। दुआ करके काम करना छोड़ देना बेकार बात है। ये तो नहीं कहा इस्लाम ने कि जी आप घर बैठ जाए और कहें कि अल्लाह मुझे रिस्क दे रिस्क दे, लेकिन आप जाके मेहनत ना करें, गलत बात होगी। असबाब इस्तेमाल कीजिए। हाँ, ये कहिए कि अल्लाह तेरे नाम पे सुबह निकलाऊँ, बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाने मदद मांगता हूँ, आज काम मिल जाए। ये है असल बात। निकलेगा तो फिर ही कोई उसको असबाब मिलेंगे ना। तो लिहाजा दुआएं भी कीजिए और दूसरा मामला भी रखिए। एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होता है दुआ से, और वो क्या? आप खुद को तन्हा नहीं महसूस करते। कभी किसी इंसान ने आपको ये कहा हो जिंदगी में, जब जहां जिस चीज की जरूरत पड़ी मुझे बुला लेना। वाकई कहने वाला 100% अपनी बात में सच्चा भी क्यों ना हो, पर हो सकता है उस वक्त वो खुद ही अवेलेबल नहीं। किसी ने आपको उम्मीद दिलाई, आना मैं ये काम करा दूंगा, आप गए, पता चला उसका तो अपना तो बदला हो गया, दुनिया से लोग चले जाते हैं, अब क्या होगा। है एक हस्ती या हय्यू या कय्यूम बिरहमति कस्तगीस, जो जिंदा भी है, जो थामने वाली है। तो दुआओं से काम लिया करें, और आफियत से ज्यादा कोई दुआ अल्लाह को महबूब नहीं है। फिर आप देखिए कि हमने आज जो तरतीब इस बुक में शुरू की हुई है वो क्या है, पहले मुसीबत आने से पहले की दुआएं, जैसे बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रुहु, और इसी तरह से फिर मुसीबत आ चुकी हो तो ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। अब हमें नहीं पता, आप अपने ऊपर लीजिए, आज 22 मार्च 2020 है, एक हफ्ता पहले जबकि हमें पता चला कि ये दुआएं मांगनी चाहिए, मिसाल है, उससे पहले यानी 22 को पीछे ले जाइए, चले 15 मार्च तक हमारी तकदीर में लिखा हुआ था कि हमने इस वबा के जरासीम से मुतासिर होना था, हमारे नसीब में था, हमें तो नहीं पता था ना। अब क्या होगा, आपने बगैर जाने, बगैर कोई गैप में झांके ये दुआएं मांगनी शुरू कर दी, खुद ही मांग ली जो अल्लाह ने आपको सिखाई, जो नफ्स सलम से। अब वो गैब से ही अल्लाह ने, या तो वो आपकी बीमारी आप पे आने ही नहीं दी, आई हुई कम कर दी, या फिर आपको बीमार करेगा फिर सेहतमंद कर देगा। यानी इतने एंगल्स हैं, ये दुआ तो एक वो टॉपिक है कि देखते हैं अल्लाह आगे क्या लेता है हमसे काम, ये मुस्तकिल टॉपिक है। तौहीद के अकसाम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के नाम पे लोगों ने शिर्क किया है वो दुआ है। तो इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे, मांगेंगे, बाद में सोचेंगे, इस वक्त बस अपने साथ एक नियत कीजिए। और मैं आपको कोई बहुत लंबी चौड़ी मुश्किल दुआओं का मशवरा नहीं दूंगी, अभी आप भी मेरे से उंगलियों पे गिनें, एक दिन की मामूल की दुआएं हैं, मुझे इसलिए याद हैं कि अमल में है तो आपको भी याद होंगी। नबी सल्लम की वो दुआएं जो आम डेली लाइफ में आप पढ़ते थे, हम सुबह उठने के वक्त से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आप फजर से कुछ वक्त पहले उठते थे, अभी बिस्तर पे बैठे ही होते, आंखें मलते, साहबी ने ऐसे करके दिखाया, ऐसे इब्ने अब्बास आपके बीवी के भांजे थे तो वो आपके घर में रहे, एक दिन तो देख रहे थे कि खालू करते क्या हैं, तो फिर उन्होंने बाद में ये हदीस हमारे तक पहुँचाई। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अपने बिस्तर पे बिल्कुल सीधे बैठे, और इन नफी खल की समावत इवल दिवख्तिलाफिल से आखिरी पूरा रुकू सूरत आल इमरान का पढ़ा। आपको मौका देती हूँ, बाद में जाके देखिएगा, 4 से ज़्यादा दुआएं उस रुकू में, और बच्चा बता रहा है कि अल्लाह के नबी ने उससे पहले वजू नहीं किया। देखिए तो आप भी जानते ना कि सो जाएं तो वजू टूट जाता है, तो इसी से फिर मसला खज हो गया कि बग़ैर वजू के भी अगर इस तरफ ज़ुबानी पढ़ रहे हैं कुरान पाक तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आप उठे तो आखिरी रुकू सूरत आल इमरान का, उठकर बैठे आप वॉशरूम की तरफ जाते हैं, मिसाल है वॉशरूम के पास खड़े हैं आप, बल्कि फिर आप उठे तो आप अगली दुआ पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर पढ़ेंगे आप। वॉशरूम पास आ जाएगा, बाहर ही खड़े होकर अभी करेंगे बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। आप टॉयलेट यूज़ करेंगे, बाहर आएंगे गुफरानका, मैं गिन भी रही हूँ साथ साथ, 8 हो गई हैं अभी तक की दुआएं, गुफरानका कहेंगे, फिर आप बिस्मिल्लाह करके वुज़ू शुरू करेंगे। वुज़ू के शुरू आखिर की कोई इस तरह अलग से दुआ नहीं है, लेकिन वुज़ू किया और उसके बाद आसमान की तरफ निगाह करके तो आप अल्लाहुम्मा जल्नी मिन तव्वाबीन वाली दुआ पढ़ेंगे, 2 दुआएं उसको एक ही गिन रही हैं अभी। अब आप वुज़ू किया, जाए नमाज की तरफ आ गए, नमाज अदा की, उस सारी नमाज को मैं एक ही गिन रही हूँ क्योंकि सारी नमाज में बेशुमार दुआएं हैं। ठीक है, क़याम की दुआ, रुकू की दुआ, सजदे की दुआ, 2 सजदों के बीच की दुआ, तशख्खुद की दुआ, फिर आखिरी तशख्खुद की दुआएं, वो सारी गिने तो मेरे लिए 10 तो ये और ही बन जाए। ठीक है, सलाम फेरी, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम फेरने के बाद की दुआएं, 9 से ज़्यादा दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी फ़र्ज नमाज के सलाम फेरने के बाद पढ़ते थे। चलिए उसके बाद नमाज से फारिग हुए सुबह शाम की दुआएं पढ़ लें, वो भी हो गई। अब आप कहते हैं कि चलें भाई अब घर वालों के लिए कुछ खाना पकाते हैं, किचन में आप आते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, किचन में काम शुरू किया, بہت ہی نیک خاتون ہے جو کھانا پکاتے ہوئے بھی ذکر کرے، اس کے کھانے میں برکت بھی بڑی ہوگی، شفا بھی بڑی ہوگی۔ بچے گھر سے نکلنے لگے ہیں، شوہر آپ کوئی بھی نکلتے ہیں، بسم اللہ ہی توکل تو، اور ایک اور دعا بھی، اللہ عمنی اوزبی کا ان دل و دل و ذل و ذلہ والی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا۔ باہر گاڑی کھڑی تھی، گاڑی میں بیٹھتے ہی سبحان اللذی، ٹھیک ہے، سب کو آتی ہے سخر لنا والی دعا۔ آپ یہاں سے نکل گئے، اب مثال ہے کوئی شاپنگ کرنے گیا ہے، مرد کہیں بازار میں اپنے کام پہ گئے ہیں، تو بازار میں داخلے کی دعا لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس دوران اگر آپ نے اپنے آپ کو ریڈی کرنے کے لیے آئینہ دیکھا، تو اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی، آپ گن سکیں ابھی تک کتنی دعائیں پڑھی ہیں آپ نے؟ اور الحمدللہ، یہ ایک بندے کی روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میں نے 500 دفعہ یہ وظیفہ کرنا ہے، میں نے 50 نفل پڑھنے ہیں، میں سوچتی ہوں وقت کہاں سے ملے گا۔ یہ تو عام معمولات کی دعا ہے، پھر واپسی کی دعا، پھر شام کی دعائیں بعد میں آئیں گی، پھر نمازوں کے ساتھ، لیکن دیکھا جائے تو ایک ایمان والا اگر سٹک آن ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعاؤں پہ، تو یہ بھی اس کے لیے بہت ہے۔ تو یہ جو آپ کو کہا گیا نا کہ دعائیں یاد رکھیں، یہ کیوں؟ یہ ہر وقت کی دعائیں ہیں، اور بچوں کے ساتھ مل کے آج کل کر لیجئے گھروں میں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کچھ نہ کچھ آپ کو بچوں کے لیے بھی دیں گے، تو آپ ذہنی طور پہ تیار رہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے ان چھٹیوں میں انشاءاللہ وہ سکھا دینا ہے جو کہ ہم نے پچھلے کئی سال میں نہیں سکھایا۔ دعاؤں کے ساتھ اللہ سے تعلق بھی جڑتا ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ بڑا لگتا ہے، بندہ چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دعا نہ مانگے نا تو کبھی کبھی اللہ بھی بڑا نہیں لگتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں یہاں چند سیکنڈ رکتی ہوں، آپ اپنی کو پیاری سی من پسند دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے۔ اگلی ساتویں نصیحت، وبا کے مقامات سے دور رہنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام کی طرف نکلے، اور جب وہ سرخ مقام پر تھے، ایک جگہ کا نام ہے جو شام کے قریب ہے بالکل، یہ خبر ملی کہ شام میں ایک وبا پھیل گئی ہے۔ اس موقع پہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اگر تم کسی زمین پر اس وبا کے بارے میں سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر وہ وبا کسی ایسی جگہ آ جائے جہاں تم بھی ہو تو اس سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلنا۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور دوسری ایک اور روایت ہے بخاری اور مسلم میں ہی ہے، ابو ہریرہ ہی اس کے راوی بھی ہیں، کسی بیمار کو صحت مند کے پاس نہ لایا جائے۔ یہ ہے وہ ہٹ ٹاپک جس پہ آج کے دور میں لوگ بات کرتے بھی ہیں اور سننا بھی چاہتے ہیں۔ تو پہلی بات تو دیکھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں اپنے اوپر لے کر کہہ دوں تو اس دفعہ ہمیں بھی اس بات پہ عمل کا ذاتی طور پہ موقع مل گیا۔ جو ساتھی سنتے ہیں ان کو پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہی ہے کچھ، ہم برمنگھم صرف 2 دن کے لیے آئے تھے، چونکہ اللہ نے اس سال دورہ قرآن کے لیے اس شہر کو چنا ہوا ہے ابھی بھی الحمدللہ، تو یہی سوچ کے کہ چلیے ایک ٹرائل کلاس کر لیتے ہیں اور جہاں پہ یہ کام ہونا ہے ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ ایگزیکٹلی 2 دن کی تیاری تھی، سب ساتھی جو ہے ان کو سب کو پتا ہے، لیکن جو باہر سے کوئی سن رہا ہے میں آپ ان کو صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم جو ٹیچ کرتے ہیں اس پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پڑھانے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، صبر کریں، شکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ دے گا۔ اب یہ ایک ایسی وبا ہے اس وقت جس کو ایک کہہ لیجئے کہ پوری دنیا کی طرف منسوب ہو رہی ہے نا، وہاں تو صرف ملک شام میں تھی نا۔ اب آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہو سکتے ہیں اپنے ارد گرد کو دیکھ کر کے، اس ملک میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، اس صورت میں کیا بات ہے؟ تو ایک دفعہ ذرا دعائیں سنیے اور پھر بات کرتے ہیں اس پہ۔
اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، عظمة أن أغتال من تحتي.
آمين ثم آمين.